डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी के मसाइल एक बहुत अहम मौजू है और आजकल की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी अमल दखल है हमारी लाइफ स्टाइल का, रीढ़ की हड्डी के मसाइल में। तो बताइए क्या चीज़ है ये?
जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हमारा जो आज का तर्ज ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी पेशरफ्त कर रही है, इसमें तरक्की हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर जो एक तरह की सहल, जो एक आसान ज़िंदगी हम जो है आराम तलब ज़िंदगी, उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब मेहनत मशक्क़त जो हमारी तारीख में देखा जाए, इंसानी तारीख जो है, सबका जो इंसान था तो उसको हाथ से ज़्यादा काम करना पड़ता था, जिस्मानी मशक्क़त होती थी, उसके साथ जो उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा जो हैं, आज़ा जो हैं, वो सारे हरकत में रहते थे, मजबूत रहते थे। उसके बाद खुराक, उसमें एक मसनूईपन का आंसर वो भी कम था, तो कुदरती अज़ा की वो खुराक लेता था, जिस्मानी मशक्क़त करता था, सारे जो जिस्म है वो सेहतमंद रहता था, बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब चूंकि हमारा जो मौजूदा दौर है, इसमें ज़्यादा वक्त जो है हम मुख्तलिफ तरह की जो डिवाइसेस हैं उसका सहारा लेते हैं, इंसान का जो अपना जिस्म है वो कम इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे ख़ास तौर पे मस्कुलोस्केलेटल जो है, हमारे जो पट्ठों वगैरह के, हड्डियों के मसाइल, इसमें इजाफा होता जा रहा है। और इसके अलावा भी मशक्क़त से हट के भी बात करें तो जिस तरह हम ज़्यादा वक्त दौरानिया जो है अपनी ज़िंदगी का वो कमरों में गुजार रहे होते हैं, दफ्तरों के अंदर बैठे रहते हैं, धूप जो है वो हमारे जिस्म पे कम पड़ रही होती है, तो इसकी वजह से भी दूसरी जो बहुत सारी मादनियात जो हमारे जिस्म को मिलनी चाहिए,
बिल्कुल,
तो वो मिनरल जो है हमारे जिस्म में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे जिस तरह विटामिन डी जो हम सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं, उसके साथ जो कैल्शियम जो है वो जिस्म में जज्ब नहीं होता। तो अब आज का जो हमारा मौजू रीढ़ की हड्डी पे है, तो अब रीढ़ की हड्डी, हम इसको एक हड्डी कहते हैं, असल में ये मुख्तलिफ तरह की हड्डियां हैं, छोटी छोटी, इनकी तादाद 33 है,
एक हड्डियों का मजमुआ है,
हड्डियों का एक मजमुआ है, उसको जो है हम रीढ़ की हड्डी कह देते हैं। वो आपस में मिली होती हैं, ये इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, गर्दन वाला हिस्सा है, सीने वाला, फिर उसके बाद नीचे कमर वाला, और नीचे वो सैक्रल और कॉक्सिस। जो सैक्रल और कॉक्सिक है, इसमें पहले जो शुरू में इसमें हड्डियां थी जुदा जुदा, अभी जब इसकी एनाटोमी को देखा जाता है तो उसमें हड्डियां अलग अलग वो नजर आ रही होती हैं एनाटोमी, लेकिन वो बाद में फ्यूज होके वो एक ही हड्डी जो है हमारे सामने होती है। तो अब इसके, अब देखें ये हमारा जो एक ढांचा हमें नजर आ रहा होता है, तो ये इसके जो वर्टिब्रा है रीढ़ की हड्डी की, एक छोटी हड्डी को हम मेडिकल की सलाह में वर्टिब्रा कहते हैं, तो एक वर्टिब्रा को देखें तो उसकी एक बॉडी होती है, उसकी ऊपर नीचे जो वो सारी तरतीब से रखी होती हैं, उसके दो वर्टिब्राज के दरमियान डिस्क होती है, एक तरह का उसका जो काम है वो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम होता है। तो रीढ़ की हड्डी खुद जो इसकी हड्डियां हैं, जब ऊपर एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो नीचे से एक जो अक्सुल अमल का दबाव होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, या ऊपर से जो दबाव आना होता है नीचे की तरफ, उसको इन्होंने एक तरह से सहारा दिया होता है। जो उसमें जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वो एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ऊपर, अगर उसको बराह रास्त कोई चोट लगती है तो वो काफी खतरनाक साबित हो सकती है उसकी हिफाजत के लिए। और फिर रीढ़ की हड्डी के पीछे जो है इसकी साख्त इस तरह की होती है कि इससे एक कैनाल सी पूरी एक बन रही होती है, जिसने हमारा जो निज़ाम आसाब है उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा जो हराम मग्ज स्पाइनल कॉर्ड है उसको इसने एक तरह से हिफाजत फराहम की होती है। अब देखें ये स्पाइनल कॉर्ड इतना हसास होता है कि अगर खुदा न खास्ता ये रीढ़ की हड्डी का जो एक हिफाजती एक निज़ाम है, हिफाजती उन्होंने जो हिसार दिया हुआ है, अगर इसको नुकसान पहुंचता है खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में, या वक्त के साथ साथ बुढ़ापा होता है, या हड्डियों की कोई बीमारियां लगती हैं, तो अगर जरा सा भी हराम मग्ज़ पे दबाव पड़ता है तो वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ सकता है। अब जो नीचे वाले जितने भी वो उसको ये अफाल अंजाम दे रहा होता है, हमारा जो नीचे वाला धड़ है ये उसी हराम मग्ज़ की मरहूने मिन्नत होता है, वहीं से शाखें जो है वो निकलती हैं और जो हमारा जो लोअर लिम्ब होता है वहां तक
उसे कंट्रोल भी कर रही होती है,
कंट्रोल कर रही होती है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी हमारे जो इंसानी जिस्म है इसमें हम इतनी इसकी अहमियत है कि हम आम तौर पे भी मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि फलान चीज को रीढ़ की हड्डी किसी अहमियत हासिल है,
एक पिलर बोल सकते हैं इंसानी जिस्म का, इसको सुतून।
हाँ जी बिल्कुल, हर चीज की बिलाखिर हर चीज जिस्म में मुख्तलिफ जो आजा हैं वो अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, कहीं पर भी कोई नुकसान पहुंचता है तो तकलीफ होती है, लेकिन यह है कि रीढ़ की हड्डी वाला जो है वो हमारा सारा जो दारोमदार है इस पे इन्हिसार कर रहा होता है, जो हमारा चलने फिरने का खास तौर पे जो हम हरकत करते हैं या पैगामात जो जो निज़ाम आसाब जो है वो सारा काम कर रहा होता है निचले मखसूस जो निचला धड़ है इसमें, तो ये रीढ़ की हड्डी पे का मरहूने मिनत होता है।
एजाज तनवी पाकिस्तान से सवाल भेजते हैं और लिखते हैं कि सुबह उठते वक्त गर्दन के मोरे दर्द करते हैं, बाद में दिन के वक्त आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द खत्म हो जाता है और रोजाना ये सिलसिला जारी रहता है, इसका असबाब और इसके इलाज के बारे में बताइए।
देखिए कि जितने भी जोड़ होते हैं, अब इसमें जो ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुबतला होते हैं, जो आर्थराइटिस है इसकी तकरीबन 100 से ज़ायद अकसाम हैं।
ठीक है।
अब इसमें जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसमें ये होता है कि जब आप शुरू में अब जो गर्दन का मसला हो, घुटने का मसला हो, ये रीढ़ की हड्डियाँ, इनके दरमियान भी ये सारे जोड़ होते हैं। हमने बाद वक्फे से पहले बात की ना, ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो आपस में मिली होती हैं, जिस तरह आप ये इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ तरह की हड्डियाँ और इसमें मुख्तलिफ तरह के कर्व हैं। तो ये होता है कि जब सुबह जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो अफराद मुबतला होते हैं सुबह जब उठते हैं तो उसको उनको ये मसला बनता है कि वो जो है उनको वो एक मोबिलिटी उनमें कम होती है, एक तरह की हरकत का दायरा है वो महदूद होता है, एक तरह की सख्ती सी पाई जाती है, स्टिफनेस। तो वो जैसे जैसे वो हरकत शुरू कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उसमें एक तरह का एक राहती का एहसास जो है उनको होना शुरू हो जाता है। तो इनका जो बड़ा मसला होता है अगर तो उम्र में ज्यादती है, ये आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जो मसले होते हैं वो बाद में उम्र के जो तकरीबन लेट होते हैं ना उधेड़ उम्र या बुढ़ापे में उसमें ज्यादा होता है, या फिर लोगों को पोस्चरल मसले होते हैं, मसलन कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो गर्दन को एक खास हालत में रखना,
झुका के रखना
बिल्कुल, तो उस हालत में ये होता है कि गर्दन वाले जो हिस्से हैं उन हड्डियों को ये मसला सामने आता है। तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। देखें इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस तरह रीढ़ की हड्डी की हम साख्त की बात कर रहे थे, तो एक इस तरह का यहाँ पे एक जो है आप दो मोहरों को देख सकते हैं और उसके दरमियान में वर्टिपल डिस्क जो है उसको भी आप देख सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो वर्टिपल डिस्क जो है वाज तौर पर दिखाई गई है। तो इसका वर्टिपल डिस्क की साख्त इस तरह की होती है कि इसका जो दरमियानी हिस्सा होता है ये कदरे जैलीनुमा नरम होता है, उसके बाहर वाला जो हिसार होता है वो सख्त होता है। तो आमतौर पे ये मसाइल भी डिस्क हर्निएशन के सामने आ रहे होते हैं जब इसके पीछे से, चूंकि हमने बात की थी कि हराम मग्ज गुजरता है, साइडों से स्पाइनल नर्व निकल रही होती हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई दबाव की वजह से ये रीढ़ की ये इसका वर्टिपल डिस्क का जो बैरूनी हिसार है वो कमजोर होता है या मुख्तलिफ तरह की दूसरी वजूहत होती हैं, लिगामेंट्स वगैरह को पट्टे कमज़ोर हों, तो ये होता है कि दरमियान वाला जो जैलीनुमा मादा होता है वो एक तरफ को दबाव डालना शुरू करता है। वो आप दाएं तरफ जो है उसमें देख सकते हैं कि एक तरफ को दबाव डाला हुआ है तो वहाँ से जो स्पाइनल नर्व जो पीले रंग में दिखाई गई है वो निकल रही है तो उस पर दबाव डाल रहा है। तो ये वाला जो है वो दाएं तरफ और बाएं तरफ दो तरह की जो स्पाइनल नर्व यहाँ से निकलती हैं, तो जिस स्पाइनल नर्व पर ये दबाव डालेगा वो निचले धड़ को वो जहां जहां पे भी उसकी सप्लाई होगी तरसील हो रही होती है वहां पे उसकी इलामाज हैं, वो दर्द की सूरत में वो हिस्सा सुन्न होगा, वहां पे जो पट्टे हैं वो कमजोर होंगे, तो एहसास नाराहती, तो इस तरह के एहसास जो हैं वो देखने को मिल पा रहे होंगे, वो हिस्सा जो है उसमें वो ताकत नहीं रहती। तो अब जो दरमियान वाली तस्वीर है उसमें अगर MRI वगैरह लिया जाए या मसलन एक्सरे वगैरह, एक्सरे में तो वो पूरी तरह सामने नहीं आएगा लेकिन वहां पर भी उन्होंने वो दिखाया गया है कि वो जो डिस्क हर्निया वाला जो केस होता है पीछे की तरफ जो है वो दबाव डल रहे हैं। तो अगर यही जो दबाव है बिल्कुल वो पीछे की तरफ आ जाए, देखिए यहाँ पे जो है एक तरफ है, अगर बिल्कुल वो उसको पीछे की तरफ ले आते हैं तो वो हराम मग्ज़ पे दबाव डाला जाता है, तो इस हालत को हम मेडिकल की सलाह में स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। तो इस तरह की अगर हालत हो तो जिस्म के दोनों अतराफ जो है दाएं बाएं वहां पर इसकी इलामत जो है वो रोनुमा हो रही होती है, तो फिर इन इलामत का इनसार भी उस चीज पे होता है कि उसकी शिद्दत कितनी है और उसी शिद्दत के साथ जो है उसके असरात सामने आ रहे होते हैं।
डॉक्टर साहब एक और तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं।
बिल्कुल यहाँ पे भी उसके रीढ़ की हड्डी के कर्व जो हैं वो दिखाए गए हैं,
पहला जो सामने पिछले, की तरफ है।
बिल्कुल वो पिछले प्रोग्राम जो हैं उनमें भी हम इस चीज का तस्करा करते रहते हैं। देखिये जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये एक तरह की जिस तरह का हरफ सी होता है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसकी जो नुमाइश है सामने जो नजर आ रही होती है ये इस तरह की होती है, तो ये जो कर्व है इसमें ये बाद में वजूद में आते हैं, यानी जब बच्चा सर को सारा देना शुरू करता है तो वो जो गर्दन वाला जिसमें सात लिखा हुआ है उसमें सात वर्टिब्रा जो कि सात होते हैं तो वो कर्व सामने आता है, फिर जब बच्चा खड़ा होना शुरू करता है तो उस खड़े होने के साथ जो है तकरीबन एक साल की उम्र में वो जो लुम्बर वाला जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे कर्व बिल्कुल नीचे जो जहाँ पे पांच है लुम्बर वाला तो ये वाला कर्व सामने आ रहा होता है। तो ये कर्व जो है इनकी भी लाइफ में बड़ी अहमियत होती है। अगर खुदा न खास्ता ये कर्व डिस्टर्ब होते हैं ये जाविये इनके तो उसकी वजह से भी चूंकि रीढ़ की हड्डी के साथ पट्ठे जो हैं वो पीछे वसल हुए होते हैं पट्ठों का बैलेंस दोनों अतराफ में सामने पीछे दाएं बाएं इस ये बड़ा अहम होता है। अगर खुदा न खास्ता एक तरफ के पट्ठे जो हैं वो छोटे होना शुरू हो जाएं एक तरफ के जो हैं वो अपनी असल हालत में रहें तो वो जिस्म जो है वो खास हिस्से दर्द कर रहे होते हैं खास हिस्सों पे दबाव खिंचाव का एहसास रहता है खास हिस्सों पर जो है वो एक तरह का दबाव बढ़ जाता है। वो काम काज के दौरान जब एक तरफ के पट्ठे वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं एक तरफ के कम कर रहे होते हैं या मसलन उनको पूरी जो लचक है वो नहीं मिल रही होती तो खास नुकात होते हैं जहां पर जो है वो तकरार के साथ रेपिटेटिव ट्रामा लग रहा होता है तो उसकी वजह से फिर जो है वो दर्द का एहसास बढ़ जाता है। एजाज तनवीर साहब का जो मसला था कि सुबह जब वो उठते हैं तो उनको वो गर्दन में एक तरह की स्टिफनेस दर्द का एहसास होता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो बेहतर होना है। अब देखें इनका अब चूंकि उम्र हमारे पास इनका वो पूरा बायोडाटा नहीं है अगर तो इनकी उम्र कम है वहाँ पे हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इतना शिद्दत के साथ ना हो जो ज्यादा इनका मसला जो है वो बाज लोगों को होता है कि अब उनका सर जो है वो आगे की तरफ वो रख रहे होते हैं या खास तरह का जो काम है उनके काम की नौइयत इस तरह की है कि वो बिल्कुल या तो गर्दन को झुका के आगे वो काम करना पड़ता है या किसी खास हालत में रखना पड़ता है या इनके सोने की जो हालत है वो ठीक नहीं है वो ऊंचा तकिया लेके सोते हैं तो वो गर्दन के खास हिस्सों पर जो मुहरों पर ज्यादा दबाव आता है तो इनको अगर तो इनकी उम्र कम है तो सबसे जो पहला काम करना है वो अपना पोस्चर उसका ख्याल रखना है कि उस पोस्चर पे जो है वो उसकी वजह से पट्ठों पे ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ रहा। अगर वो पिछले एक पट्ठे दबाव में हैं तो वहां पे वो एक तरह के जो है ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह वो बनना शुरू हो जाते हैं तो इन चीजों का ख्याल रखें। लेकिन जरूरी है कि यहाँ पे जो है वो गर्दन की हल्की फुल्की जो वर्जिशें हैं उनको भी अंजाम देते रहें। गर्दन के ये बताते चलें कि तकरीबन 34% या 30 से लगा लें कि 35% जो अफराद हमारे पास रीढ़ की हड्डी के सिलसिले में मुराजे करते हैं वो आते हैं वो गर्दन वाले हिस्से की वजह से आते हैं। कमर दर्द का तो वैसे ही सर दर्द के बाद हम कह सकते हैं कि कमर दर्द जो है इसका मसला सबसे ज़्यादा होता है तो इस ये गर्दन वाला जो है इसका मखसूसन आज का जो दौर है इसमें कंप्यूटर का जब से इस्तेमाल बढ़ा है तो लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल और जो ठीक जगह पे बैठ के जब वो काम नहीं करते एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी वजह से गर्दन के भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
डॉक्टर साहब जीशान राशिद साहब कश्मीर से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है और थोड़ा ऊपर आई है अब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं और उसमें दर्द भी होता है तो ये क्या करें।
देखिए रीढ़ की हड्डी के जब टेढ़ापन होता है तो वो टेढ़ापन जो है मुख्तलिफ अतराफ में होता है अब चूंकि इन्होंने वो ठीक तरह से नहीं बताया
पूरी कंडीशन नहीं बताई है।
अब टेढ़ापन जो है वो एक कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हैं कि काइफोसिस जब रीढ़ की हड्डी की जाविये हमारे तस्वीर में सामने थे तो उसको हम सीने वाला जो हिस्सा है वो अगर वो मजीद पीछे चला जाता है वो ज्यादा होता जाता है हाइपर काइफोसिस तो उस हालत को वो सूरत में भी ये होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो पीछे आना शुरू हो जाती है। बस कुछ ये होता है कि रीढ़ की हड्डी को जब आप एक्सरे लेते हैं या बिल्कुल उसको सामने से या पीछे से देखते हैं तो हमें एक सीधी लाइन की सूरत में वो एक खत की सूरत में नजर दिखाई दे रही होती है लेकिन अगर उसी को जो है वो साइड से देखें तो फिर वो जाविये हमें नजर आते हैं। तो जब उन जावियों में तब्दीली आती है ये भी अब मुख्तलिफ तरह की जो है उसमें वजूहत होती हैं मस्कुलर इम्बेलेंस होता है या पैदाइशी तौर पर यह होता है कि रीढ़ की हड्डी बाज लोगों को काम की नौइयत इस तरह की होती है मिसाल के तौर पर कोई राइटर है उसको बस लोग जो क्लर्क वगैरह होते हैं या कोई लिखने लिखाने का जिनका काम होता है या हत्ता तालबे इल्म लगा लें तो उन्होंने एक तरफ को बैठ के जो है वो लिखना होता है तो एक तरफ से रीढ़ की हड्डी पे दबाव जो है वो ज्यादा पड़ता रहता है और मखसूसन इन लोगों का ये भी मसला होता है कि इस तरह के लोग वर्जिश भी नहीं कर रहे होते खास तरह की इनकी रोजाना की रूटीन होती है तो इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी की जो साख उसमें तब्दीलियां रोनमा होती हैं, और ये भी बाज़कत होता है कि रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं, ये जो वर्टिब्रास हैं, ये भी आगे पीछे जा सकते हैं। और इसके अलावा इस पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ऑस्टियोफाइट्स वगैरह उभार भी बनते हैं। अब इनका जो भी मसला है वो इन्हीं मसाइल में से कोई हो सकता है, तो इनको चाहिए कि अपने करीबी जो ऑर्थोपेडिक हैं, न्यूरोसर्जन या फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनसे रजू करें ताकि वो बेहतर अंदाज में उसकी तशखीस दे के जो असल मसला है। और रीढ़ की हड्डी को बहुत संजीदगी से लेना
बिल्कुल
चाहिए, और इसमें अगर कभी भी आपको दर्द महसूस हो रहा है तो उसको फौरन पता लगाना चाहिए कि ये दर्द की नौईयत क्या है। अगर दर्द जो है, बस कुछ ये भी होता है, मसलन ये एक सवाल है कि दर्द पट्ठे का है या वो असाबी दर्द है, तो अगर तो वो दर्द जो है आपकी मूवमेंट के साथ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उसके साथ जो है नीचे नीचे की तरफ वो एक जैसे कहते हैं कि दर्द की एक लहर सी जाती है, इस तरह का एहसास नहीं होता, तो वो पट्ठे का दर्द होता है जिसमें अगर आप हरकत करते हैं तो उसके साथ वो थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार करता है। लेकिन अगर साथ जो है वो आपका निचला हिस्सा, जिन हिस्सों को असाब जो है उसकी तरसील हो रही होती है, अगर उन एरियाज में आपका हिस्से वो सुन भी होते हैं साथ, वहां पे एक एक जैसे वो करंट की सूरत में दर्द जाता है, जिस तरह वो आम जो सादा जुबान में कह रहे हैं कि चूंटियां चलती हैं जिसमें, तो इस तरह की जो टिंगलिंग वगैरह की सूरत हाल अगर इस तरह का सामना होता है तो वो आसाब पे फिर शक किया जाता है।
सही। मैं दो सवाल साथ पूछना चाहूंगी, कब से ये मसला शुरू होता है, जब से हम बच्चों के बैगों में जो है किताबें लाद कर उनकी जो है कमर पर डाल देते हैं, या नहीं कोई खास उम्र है, और कौन सी एहतियाती तदाबीर है इसकी?
देखिए, रीढ़ की हड्डी जो है इसकी साख्त बहुत ही पेचीदा होती है, इसमें हमें मुख्तलिफ तरह की हरकत दरकार होती हैं जो हम जो मुख्तलिफ तरह के अफाल सर अंजाम देते हैं, तो ये मसाइल जो हैं पैदाइशी भी हो सकते हैं, जब बच्चे के जो हत्ता जब न्यूरल ट्यूब वगैरह बन रही होती है तो उस वक्त भी रीढ़ की हड्डी के जो असाबी जो मसाइल हैं वो ऐसे हैं जिस तरह स्पाइना बायोफाइडा है, तो वो पैदाइशी भी हो सकते हैं सारे मसाइल। फिर जब बच्चा जो है वो खेल कूद रहा होता है, जब मुख्तलिफ तरह के जो एक्टिविटीज़ वो सर अंजाम दे रहा होता है, तो फिर उसकी तर्ज ज़िंदगी की वजह से भी ऐसे मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों में लिया जाए तो एक मसला बच्चों में गर्दन का टेढ़ा पानी एक तरह का होता है, टॉर्टिकोलिस जो है, तो उसमें भी ये होता है कि गर्दन का एक तरफ का जो पट्टा है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो बच्चा जो है वो गर्दन को एक तरफ को घुमा के रखता है, तो वो वक्त के साथ राई नेक की सूरत में जो है वो परमानेंट भी हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल जो हैं उन पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, और फिर वक्त के साथ साथ जो हम पूरी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो उसमें जो हमारी आदत होती हैं उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी को मसाइल सामने आ रहे होते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आगाही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी तर्ज ज़िंदगी हमारा उसकी वजह से हमारे जिस्म को किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें एक तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए, और फिर उससे बचने की जितनी भी वो तरकीब हैं उसके उस पर अमल भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे फर्नीचर का ठीक होना ज़रूरी है तो उसको ठीक करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने मसलन गाड़ी में कैसे बैठना है कुर्सी पे कैसे बैठना,
काम करते वक्त कैसे बैठना
बिल्कुल
है।
या किसी खास जगह पर जो है वो कितने दौरानी के लिए एक खास हालत में जो है वो बैठे रहना है, और उसके बाद अगर जिस्म पे उसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं तो उसका हमें इल्म होना चाहिए कि वो जो हैं वो असरात आ रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल हैं इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। अगर किसी जगह पे आपको दर्द का एहसास हो रहा है, बाज़ लोगों को होता है कि वो ठीक है, हल्का फुल्का दर्द है, चलता जाए, अगर खुदा न खास्ता वो दर्द आपके असाब का है, और जिस तरह हमने तस्वीर में भी पहले देखा, अगर जो डिस्क हर्निएशन है या जो असाब हैं उसके दूसरे रीढ़ की हड्डी के मसाइल हैं, तो ये होता है कि वक्त के साथ साथ वो बदतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमें इल्म हो उस चीज़ का, अगर हम आराम भी करते हैं तो आराम के बाद जो है वो एक खास हद के बाद वो जो है उसमें बेहतरी आती है, और इस तरह के जो मसाइल हैं उसमें जो ज्यादा देर के लिए आराम वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता एक खास हालत में, यानी उसकी एजुकेशन सबसे बेहतर होती है कि मरीज को ये इस चीज का इल्म होना चाहिए कि कितनी देर के लिए रेस्ट करना है, कहाँ पे उसको हरकत की जरूरत है, ताकि बाज ऐसे मसाइल होते हैं कि अगर ज्यादा दौरानी के लिए वहां को उसको जो है हरकत ना दी जाए तो वो जोड़ ज्यादा मसाइल का जो है वो बाइस बन जाता है।
एक गाड़ी के पुर्जे की तरह उसको जंग लग जाता है, हम ये बोलें हरकत का दायरा महदूद हो जाएगा।
बिल्कुल, हरकत का दायरा वो महदूद होता है। जब हरकत का दायरा महदूद होता है तो बाद में चूंकि अगर किसी भी जोड़ में पूरी तरह की हरकत नहीं आती तो उसका जो है असर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर पड़ रहा होता है। हत्ता आपका अगर जूता भी ठीक नहीं है तो उसका असर भी आपकी कमर पर पड़ रहा होता है। तो इसलिए इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद असदुल्लाह अरसलान साहब, आप तशरीफ लाए, जबरदस्त गुफ्तगू रही, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।